नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास देखा, कहा भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ करीब 90 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। राज्य के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश, धौलपुर के गोगली गांव में मकान ढहने से 2 मासूमों की मौत, कई बांधों से अतिरिक्त पानी की निकासी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना क्षेत्र में करीब 81% काम पूरा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर कई तरह के उपकरण आज देश में ही स्वदेशी तकनीक से बनाए जा रहे हैं। श्री सिंह जोधपुर में आयोजित वायुसेना के तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान आयोजित एयर शो के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं हो रहा है बल्कि करीब 90 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात भी कर रहा है।
हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं।
रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे युद्धाभ्यास मित्र देशों के बीच आपसी सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देते हैं, साथ ही ये भरोसा भी होता है कि आवश्यक होने पर वे एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि सीखते रहने की प्रवृत्ति से ही मानव सभ्यता का भी विकास होता है, ऐसे में साथी राष्ट्रों से सीखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है, इसीलिए कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ सीखना समय की जरूरत है। हमारे संवाददाता ने बताया कि रक्षा मंत्री की उपस्थिति में आयोजित एयर शो में वायुसेना के विमानों ने अपनी क्षमता और शक्ति का प्रदर्शन किया। राज्य के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटों में राजाखेड़ा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, अकलेरा और मनिया में बहुत भारी बारिश हुई है। इसके अलावा 30 कस्बों और शहरों में भारी बरसात दर्ज की गई है। धौलपुर जिले में लगातार बारिश के कारण सैपऊ उपखंड के गोगली गांव में एक मकान ढहने से 2 मासूमों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए जिन्हें धौलपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिले में चंबल का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, वहीं पार्वती नदी में पानी की भारी आवक के बाद बांध के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। करौली के पांचना बांध से भी अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। भरतपुर में लगातार बारिश से कई मार्ग अवरूद्व हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भरतपुर में भारी बारिश होने से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने भरतपुर जिले का दौरा कर जलभराव क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने शहर की सुजानगंगा नहर, चांदपुल गेट क्षेत्र सहित अन्य इलाकों में जलभराव से बिगड़े हालातों को देखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर जल निकासी के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर ने भी आगामी 14 सितम्बर तक कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी करने के आदेश जारी किए हैं। शिवकुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
तेज बरसात, जल भराव और मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर कई जिलों के स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। इस बीच मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 24 घंटों में पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं।
भरतपुर संभाग, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस दौरान भरतपुर संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश और जयपुर कोटा संभाग में कहीं कहीं हेवी रेन की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी रहेगी। इसके बाद 13-14 सितंबर से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। हालांकि उत्तर पूर्वी राजस्थान में मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां 13 सितंबर को भी दर्ज होने की संभावना है। 14 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में और कमी होगी। ज्यादातर इलाकों में वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव होगा, तो अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और केवल पूर्वी राजस्थान में कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश होने की ही संभावना बनी रहेगी।
राष्ट्रीय पोषण माह अभियान में राजस्थान देश में 8वीं पायदान पर चल रहा है। महिला और बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेंद्र सोनी ने ये जानकारी दी। वे जयपुर से वीसी के माध्यम से जिला उपनिदेशकों और सीडीपीओ के साथ राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। श्री सोनी ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर सहित बड़े जिलों को बेहतर प्रदर्शन करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदर्शन तालिका में अंतिम 5 जिलों बांसवाड़ा, टोंक, बाड़मेर, करौली और नागौर को प्रदर्शन सुधारने को कहा, ताकि प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर पहले 5 राज्यों में शामिल हो सके। आईसीडीएस के निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि पूरे प्रदेश में अभियान को उत्साहपूर्वक चलाया जा रहा है। ये अभियान एक जन आंदोलन के रूप में उभर रहा है। चूरू जिला पहले स्थान पर, अजमेर जिला दूसरे और हनुमानगढ़ जिला तीसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चल रहे इस अभियान में एनीमिया, बच्चों की बढ़ोतरी की निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आज करौली के सायपुर में पोषण युक्त आहार की प्रदर्शनी लगाई गई और पोषण रैली निकाली गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे अजमेर जिले के बांदरसिंदरी में केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री धनखड़ विकसित भारत एट 2047 में उच्च शिक्षा की भूमिका विषय पर विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद वे वीर तेजाजी मंदिर सुरसुरा में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति का नागौर जिले के खरनाल स्थित वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन का भी कार्यक्रम है। श्री धनखड़ कल ही दिल्ली लौट जाएंगे। बालोतरा जिले में पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना क्षेत्र में करीब 81% काम पूरा हो गया है। खान और पेट्रोलियम सचिव टी रविकांत ने समीक्षा बैठक में बताया कि रिफाइनरी की 10 प्रोसेस इकाइयों का 90% से ज्यादा काम हो चुका है। उन्होंने बताया कि राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से पेट्रोल और डीजल के अलावा पेट्रोकेमिकल उत्पाद जैसे पॉलीप्रोपिलिन, ब्यूटाडीन, एलएलडीपीआई, एचडीपीआई, बेंजीन और टोलुइन के क्षेत्र में निवेश आएगा। इससे रोजगार और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने आज सलूम्बर में किसान सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। दीग जिले में किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते 75 वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएंगी। अतिरिक्त कृषि निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि योजना के तहत किसानों को लागत का 50% या अधिकतम 50,000 रूपये तक का अनुदान दिया जाएगा। ऐसे किसान जिनके पास लगभग एक एकड़ जमीन है वे पास के ई मित्र केंद्र पर जाकर या राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य रासायनिक खाद से बंजर होती जमीन को बचाना और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के साथ किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। पर्यटन मंत्रालय ने देश में सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों की पहचान करने और उन्हें मिशन मोड में विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने में आमजन की मदद लेने के लिए पहल की है। देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 के तहत देश के आमजन 5 पर्यटन श्रेणियों आध्यात्मिक सांस्कृतिक और विरासत प्रकृति और वन्य जीवन साहसिक और अन्य पर्यटन स्थलों के बारे में वोट कर सकते हैं। इसके लिए एक समर्पित पोर्टल innovateindia.mygov.in/देखो अपना देश पर 15 सितंबर तक वोट किया जा सकता है। इस वोटिंग के परिणामों से भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों को निर्धारित करने में मदद मिलेगी जिन्हें प्रमुख हितधारकों से पर्याप्त समर्थन और निवेश प्राप्त होगा। इससे मंत्रालय को कम ज्ञात पर्यटन स्थलों को समझने में भी मदद मिलेगी जिन्हें लोग अब तक लोकप्रिय रहे पर्यटन स्थलों के अलावा भी देखना पसंद करेंगे। इन स्थलों का मिशन मोड में विकास किया जाएगा। पेरिस पैरालंपिक से लौटे भारतीय दल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बार भारतीय एथलीटों ने टोक्यो के रिकॉर्ड प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए पैरालंपिक में देश के लिए अब तक के सर्वाधिक पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य पदकों के साथ कुल 29 पदक हासिल किए और पदक तालिका में 18वां स्थान प्राप्त किया। जैसलमेर के रामदेवरा में बाबा रामदेव का भादवा मेला परपान पर है। आगामी 14 सितंबर को मेले का समापन होगा। मेले का समापन नजदीक आने के साथ ही यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामदेव जयंती और तेजादशमी पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास देखा। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ करीब 90 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। राज्य के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। धौलपुर के गोगली गांव में मकान ढहने से 2 मासूमों की मौत हो गई। प्रदेश के कई बांधों से अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना क्षेत्र में करीब 81% काम पूरा हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।